أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الحمد سورة بقرة پھر آیت الکرسی سورة آل عمران کے تعارف اور ان کے فضائل و برکات کے بعد آج سورۃ النساء اس کے تعارف اور اس کے حیرت انگیز و فضائل و برکات ہیں اور اس کے پیغامات ہیں اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی. دیکھیں یہ جو سورہ ہے 176 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور یہ سورہ نزولی اعتبار سے 91 نمبر کا سورہ ہے 91 یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے اور موجودہ جو ترتیب جو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے خود ترتیب دے کر گئے تھے اس کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر کا سورہ ہے. اچھا یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور اس زمانے میں جب یہ سورہ نازل ہو رہا تھا تو مدینے میں حکومت اسلامی کی تشکیل ہو رہی تھی، ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اس کی تاسیس ہو رہی تھی. تو اسی کے ضمن میں تقریباً یہ ساری آیات نازل ہوئیں. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سورے مکمل طور پہ مکی ہوتے ہیں، بعض سورے مکمل طور پہ مدنی ہوتے ہیں، بعض مکی سوروں میں مدنی آیات ہوتی ہیں، بعض مدنی سوروں میں مکی آیات ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ اس میں آیت 58 کے علاوہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری مدنی آیات ہیں. صرف ایک آیت 58 ہے جس کے متعلق علماء اور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مکی آیت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آیات اس کے اندر اور ہیں 176 میں سے 175 آیات وہ سب کی سب مدنی آیات ہیں، جو خاص مدینے کے اندر جو معاشرہ اسلامی حکومت کے بعد تشکیل پا رہا تھا اس کے ضمن میں وہ آیات سب نازل ہوئی. اچھا یہ جو سورہ ہے یہ وہی سبع طوال میں شامل ہے، یعنی وہ سات سورے جو طویل ترین سورے ہیں ان کے اندر یہ سورہ بھی شامل ہے اور یہ قرآن کا دوسرا بڑا سورہ ہے. اس ترتیب کے لحاظ سے آل عمران پہلے نمبر پر آیا تھا سورہ بقرہ کے بعد، لیکن سورہ آل عمران سورہ نساء سے بڑا نہیں، قرآن کے اندر جو ترتیب ہے بڑے سوروں کی اس میں سورہ بقرہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر یہ سورہ نساء ہے جس کی آیات سورہ آل عمران سے بھی زیادہ ہیں، حالانکہ سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے اس سے پہلے. تو یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے. اچھا سورہ نساء کی اگر برکات اور فضائل کے اعتبار سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو سب سے اہم ترین چیز کہ واقعتاً جس میں ہر مومن کا دل دہل جاتا ہے اس بات کو سوچ کر، وہ ہے فشار قبر. تو یہ سورہ فشار قبر سے بھی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم سورہ ہے، اور جتنی بھی ہماری تفاسیر ہیں بلکہ شیعہ و سنی تمام تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے اور وہ روایت بھی ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کہ جو شخص بھی جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا. جو بھی شخص جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کو یقین ہے، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز پہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تک کے اوپر لوگوں کے شک و شبہات ہیں جس سے واضح تر کوئی چیز نہیں. لیکن موت کے متعلق کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے. ٹھیک ہے بعد کے مراحل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر بحث ہوتی، لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے یا مومن ہونے کے اعتبار سے فشار قبر کا بھی سب کو علم ہے، روایات بھی لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ اس چیز کا دفعہ پہلے سے کر لیا جائے، اس کا حفاظتی انتظام پہلے سے کر لیا جائے جس کی طرف سے ہماری صرف نظر ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے اور اس کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں. देखिए, जब भी कहा जाता है कि दुआ के जो आदाब बताए गए हैं उनमें एक अदब ये भी है कि दुआ कबलस बला, यानी बला को नाजिल होने से पहले उसका दफिया कर लीजिए। यानी ऐसा ना हो कि मसलन चीज एक बला और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाए और बाद में उसके लिए दुआ कर रहे हो, नहीं, पहले से उसका दफिया करना चाहिए। इसी तरीके से जब मालूम है कि फिशार कबर है, अजाब कबर है, बाद के सख्त मराहिल हैं, तो क्यों उनका दफिया पहले से नहीं होता, जबकि हम दुनिया में देखते हैं कि कितने ही मजाहिर ऐसे हैं कि हम उन चीजों का दफिया पहले से करके रखते हैं। बच्चे को हिफाजती टीके आप क्यों लगवाते हैं कि भाई ये बड़ा होने के बाद या जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी कुछ बीमारियों का शिकार हो सकता है, तो उसकी हिफाजत के लिए पहले से हिफाजती टीके वगैरह लगवाए जाते हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले सर्दियों के कपड़ों की तैयारी होती है, गर्मियों के आने से पहले गर्मी के कपड़ों की तैयारी होने लगती है। लोग मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेशन के लिए जा रहे होते हैं या तर्क वतन करके जा रहे होते हैं, तो वहाँ मौसम कैसा है उसके मुताबिक कपड़े और तमाम इंतजाम करके वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे अफराद हैं, बूढ़े हैं, या एक इंसान जवानी की हालत में बहुत सी बीमा पॉलिसियां लेता है कि भाई जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, जॉब करने काबिल नहीं रहूंगा, तो ये बीमा पॉलिसी मैं अभी से लेके रख रहा हूँ ताकि बाद में उसके लिए मेरे लिए एक इत्मीनान की जिंदगी में आखिरी जमाने में बसर करूँ। तो ये तमाम चीजों के इंतजाम आखरत के लिए क्यों नहीं करके रखे जाते, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुनकिर और नकीर की आसान सवालात से आसानी के बचने के अमाल कौन से हैं, फिशारे कब्र से बचने के अमाल कौन से हैं, दीगर अजाब कब्र से बचने के अमाल कौन से हैं, मौत की सख्ती से बचने के अमाल कौन से हैं, और बरज़खी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी क़यामत तक का जो पीरियड होगा वो कैसे गुजरेगी, उसके अमाल कौन से हैं, फिर जब क़यामत में उठाया जाएगा वहाँ पे जो मुश्किलात होंगी और पुलिस रात और चौकियाँ और मौक़ाफ़ और रोज़े महशर की जो सख्तियां वगैरह, उनसे बचने के मखसूस मखसूस आमाल भी बताए गए। तो इंसान को हमेशा इस मुताले में कुछ अपना वर्क करके रखना चाहिए कि मैं उन चीज़ों का पहले से इंतजाम करके रखूं, जैसे इस दुनिया के अंदर अपने लिए करके रखता है। ये मुख्तसर से दुनिया यहाँ अगर नहीं भी अगर करेगा तो क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंसान हिफाजत के लिए अपनी तमाम चीज़ें करके रखता है। तो बहरहाल फिशारे कब्र से हिफाजत का ये सूरा है। अच्छा, इसकी एक और फजीलत ये है कि इसकी तिलावत का सवाब इस कदर ज्यादा है, पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाती हैं। तफसीर मजमूल बयान में भी ये बात है, तफसीर नूर सकलेन में भी ये बात है कि जो शख्स भी सूरह निसा की तिलावत करेगा गोया उसने उस कदर माल राह खुदा में दिया है जितना सूरह निसा के एतबार से एक वारिस का हक बनता है, यानी अपने तमाम हक विरासत के बराबर माल को राह खुदा में देने का सवाब। बहुत से लोगों को जाहिर है कि विरासत में बड़ी बड़ी रकमात जो मिलती हैं, मकान घर मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, मसलन लाखों करोड़ों रुपए, तो इसकी अगर कोई तिलावत करेगा तो वो गोया अपने हक विरासत के बराबर माल को उसने गोया राह खुदा में दे दिया, यानी समझे कि करोड़ों रुपए आज मिला उसको और उसने वो सारा का सारा खुदा की राह में सदका कर दिया, तो सूरह निसा का इतना अजीम सवाब उसको मिलेगा। 1 रुपया देने का सदक़े का किस कदर सवाब है, और इंसान लाखों करोड़ों रुपए मसलन अगर दे दे, तो बहरहाल अलबत्ता ये जरूर है कि इसके अंदर ये वाली गुंजाइश भी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस ठीक है उसमें से तो हम 1 पाई नहीं निकालेंगे और सूरह निसा चलें, इसमें इतना ज्यादा माल तो खर्च नहीं होता है ना, तो सूरह निसा की तिलावत कर लेंगे, तो ये वाली थिंकिंग भी ना आए। और ये चीजें सिखाई भी इस लिहाज से जाती हैं सवाब बता के कि इंसान को उसकी तरफ से भी दिमाग में रहे कि मैं और तरीक़ेकार भी ऐसे अख्तियार कर सकता हूँ, मसलन विरासत का माल मिले तो उसमें से भी राय खुदा में मैं तसद्दुक करूँ। एक लिहाज से विरासत में जो मिलता है एक फ्री का एक माल मिल रहा होता है, तो इस माल में दूसरे गरीब गुरबा वगैरह को क्यों ना शरीक किया जाए, तो इस तरफ भी लोगों का दिमाग उस लिहाज से होना चाहिए। इसी तरह से अभी तक तो सिर्फ आपने विरासत के माल के लिहाज से सुना था, बाकी चीज नहीं, लेकिन कुछ रिवायात ऐसी भी आई हैं जो तफसीर नमूना में भी है, तफसीर मजमूल बयान में भी है, کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا بطور صدقہ، بطور صدقہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ مثلا غلام آزاد کرنے کا کس قدر ثواب روایتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو ابھی تک تو اپنے پچھلی روایت میں پڑھا کہ اپنا صرف حق میراث جو اس کو کسی بھی شخص کو ملتا ہے اس کے برابر راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب، دوسری روایت میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں عطا کرنے کا ثواب یہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ حساب و کتاب کے جو ہولناک لمحات ہیں جن سے عرفا کے دل دہل جاتے ہیں، اس سے نجات کے لیے بھی یہی سورہ نساء ہمارے آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا کوئی محاسبہ ہی نہیں ہوگا اور وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑی ایک اہم ایک چیز ہے، حساب و کتاب کے ہولناک لمحات میں یہ سورہ نجات دے گا۔ اچھا، اس کے کچھ کیا کوئی خاص وقت بھی ہے سورہ کی تلاوت کا؟ ویسے تو دیکھیے تلاوت قرآن کا کوئی خاص ایسا وقت نہیں ہے، خاص طور پر سورہ نساء کے، یعنی کسی بھی وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی، یہ کوئی، لیکن بہرحال کچھ خاص اوقات، مثلا شیخ طوسی نے مصباح المتحجد جو ہے اس میں بات لکھی ہے کہ جمعے کے دن صبح کے وقت اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے تو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن صبح کے وقت اگر اس کو پڑھیں تو اس کی تلاوت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضائل اور برکات بھی انسان کو زیادہ حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سے خوف کے خاتمے کے لیے سورہ نساء پڑھنا، خوف کا خاتمہ، ابن طاؤس کی جو ایک مشہور کتاب ہے الامان من اختار الاسفار والازمان، یعنی مختلف زمانوں اور سفروں کے اندر جو انسان کو خوف لاحق ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں، تو اس میں ابن طاؤس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ نساء کو برتن پر لکھ کر، کوئی بھی ایک برتن ہو جس پہ لکھے ہو سورہ نساء کو، اور اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو بارش کے پانی سے دھو دے، اور اس دھوئے ہوا جو پانی ہے جس کے اندر جو سورہ نساء لکھی گئی تھی جس پانی سے دھوئے گا، وہ جو پانی ہے اس کو اگر وہ پی لے تو جس کسی سے بھی اس کو کوئی خوف محسوس ہوگا وہ خوف دور ہو جائے گا۔ یعنی ہر طرح کے، مثلا کسی انسان سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کسی غیر انسانی چیز سے خوف محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کرے کہ ایک برتن پہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے، تو جس چیز سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا وہ خوف اس کا دور ہو جائے گا۔ یہ ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح سے شرک سے دوری کے لیے بھی ہے۔ اچھا، دماغ میں بات رہے کہ شرک کی بھی ظاہر ہے کئی اقسام ہیں، مثلا اس میں ایک تو وہ شرک ہوتا ہے جو مشرکین وغیرہ کرتے ہیں جسے شرک اعتقادی کہا جاتا ہے، لیکن ایک اعمال کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، یعنی انسان اس کی بھی ایک ذرا ایک الگ تفصیل ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص، البتہ اس کا ویسا کوئی وہ نہیں کہ وہ انسان مشرک ہو جائے اور کافر ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات، تو عام طور پر جو عام مسلمان اور مومنین ہیں وہ اس طرح کے شرک کے اندر تو عمومی طور پر مبتلا نہیں ہوتے ہیں، البتہ لوگ، بہت سے لوگ اس کا وہم ڈالتے ہیں کہ آپ مشرک ہو رہے ہیں، اور تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شرک کی بہت ساری اقسام، تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ اس پہ ہمارے ایک الگ سے ایک درس بھی ہو چکا ہے شرک کی اقسام کے اوپر، کہ اس میں کون سی چیزیں مشرک بناتی ہیں، کون سی چیزیں صرف گناہگار بناتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو شرک کہا گیا ہے لیکن وہ صرف گناہگار انسان کو بناتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہ اس کے اوپر مشرک کے احکامات لاگو ہو جائیں۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے شرک سے دوری، مجمع البیان جو ہماری تفسیر ہے بڑی مشہور جو علامہ طبرسی کی، उसके अंदर भी ये बात आई है कि इसकी तिलावत करने वाला शिर्क से दूर रहेगा और वो मशीयत इलाही में उन अफराद में शुमार होगा जिनसे अल्लाह ने दरगुजर से काम लिया होगा, यानी जिसको अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी मिली। यानी सूरह निसा की तिलावत करने वाला ये शिर्क से दूर रहेगा और उन अफराद के अंदर शुमार होगा कि अल्लाह की मशीयत में ये बात हो कि इस शख्स को बारगाह खुदाबंदी से मुआफ़ी नसीब होगी। तो कितनी बड़ी कितना बड़ा मरहला ये कि इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाएं, वो शिर्क जैसे गुनाह है उससे भी आलूदा ना हो, ये खुद सूरा हिफाजत करता। इसी तरह से गुमशुदा की बाजियाबी के लिए, अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी जगह कोई चीज़ रखकर इंसान भूल गया हो और उसे याद नहीं आ रही हो, तो रिवायात में ये चीज़ आई है, उलमा ने लिखी है अपनी किताबों में कि सूरह निसा की आयत नंबर 58 उसको एक नए बर्तन पर लिखे, नए बर्तन पर किसी भी गुमशुदा चीज़। अच्छा इसमें गुमशुदा चीज़ जैसे कोई भी चीज़ अगर कहीं रखकर भूल गया है, आमतौर पर घरों में होता है, तो सूरह निसा की आयत नंबर 58 को किसी नए बर्तन पर लिखे और उसको बारिश के पानी से धोए और उस पानी को उस जगह पर छिड़के जहां से वो चीज़ गुम हुई है या इम्कान हो उस चीज़ के मिलने का, कि यहां से ये चीज़ गायब हुई थी मसलन इस कमरे से, इस घर से जहां से वो चीज़ आप कहीं रखकर भूल गई हैं, इसको ज़ाहिर आपको पता है कि ये खास कमरा मैंने यहां रखी थी, अब वो नहीं मिल रही है, ये कम से कम वो घर है, तो सूरह निसा की आयत नंबर 58 को किसी बर्तन पे लिखे और बारिश के पानी से उसको धोए और उसका पानी उस जगह के ऊपर छिड़के जहां से वो चीज़ गायब हुई थी या जिसकी जहां से मिलने का इम्कान। तो ये कहा जाता है कि अल्लाह उसकी उस जगह पर खुद ब खुद रहनुमाई कर देगा किसी भी जरिए के जहां पर वो चीज़ मौजूद होगी। शेख कफ़मी ने अपनी किताब मिसबाह में, मिसबाह कफ़मी के नाम से मशहूर है, उसके अंदर भी इस अमल को लिखा है। तो ये गुमशुदा चीज़ के हवाले से, अच्छा गुमशुदा चीज़ों ही के हवाले से ये जो सूरह निसा की आयत नंबर 58 है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म देता है कि अमानात को उनके अहल की तरफ पलटा दो, उनको वापस करो। तो ये जो चीज़ होगी उसके पास पलट कर वापस आ जाएगी जिस शख्स के पास भी, कहीं पे भी अल्लाह बहरहाल उसको उस जगह तक, उस चीज तक पहुंचा देगा जहां से वो चीज गायब हुई थी, उसको वो चीज मिल जाएगी। तो गुमशुदा चीज की बाजियाबी के लिए, अच्छा इसी दौरान क्योंकि जाहिर ये बात आ गई है अभी तो अलग से तो इसके ऊपर जरा करना मुश्किल हो जाता है, तो यहीं पर हम कुछ एक आध चीज और भी सिलसिले में बता दें। कुछ एक आध दिनों में ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें लोगों ने बहुत ये वाली बात लिखी, तो उसमें पैगम्बर इस्लाम खत्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर बुरहान में एक रिवायत है पैगम्बर से कि अगर कोई शख्स किसी जगह एक चीज भूल गया था, अब उसे याद आया है कि मैं फला फला जी जगह पर वो चीज भूल आया हूं, तो अगर वो सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत करे तो चीज मिलने तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ने चीज रखी, ऐसा ना हो करे फला जगह भूल तो आया लेकिन वो तो मैंने पब्लिक प्लेस पे गया था वहां पर भूल गया, गया मोबाइल फोन भूल आया, फला चीज भूल आया जो अहम चीज थी, तो सूरह वज़्ज़ुहा की वो तिलावत करे इस नीयत से, तो जब तक वो उस तक पहुंच नहीं जाएगा अल्लाह बाहिफाजत उस चीज को रखेगा और उस शख्स तक पहुंचाएगा। यानी गुमशुदा चीज की बगैर नुकसान बाजियाबी के लिए सूरह वज़्ज़ुहा। वैसे ये अपने मुकाम पर जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि हम आखिरी पारे तक पहुंच जाए और उसमें सूरह वज़्ज़ुहा के फजाइल बरकात बयान कर रहे हों, तो वहां पर इंशाअल्लाह इस बात का तस्करा दोबारा भी आएगा। इसी तरह से गुमशुदा की बाजियाबी के लिए, अगर ये तो चीज की बात थी इससे पहले, अब गुमशुदा शख्स का नाम लेकर भी अगर कोई शख्स सूरह वज़्ज़ुहा को लिखे तो वो शख्स अपने दोस्तों में अपने चाहने वालों में सही सालिम लौट आएगा। यानी सूरह वज़्ज़ुहा लिखे उसके साथ उस गुमशुदा शख्स का नाम भी लिख दे। तो पैगम्बर इस्लाम खत्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स सही और सालिम अपने दोस्तों तक लौट आएगा, सही और सालिम। तो बहुत से लोग बड़े परेशान होते हैं, लोग खुदा ना खास्ता अगवा हो जाते हैं या मसलन उठा लिए जाते हैं मुख्तलिफ अफराद की तरफ से, मिसिंग पर्सन्स वगैरह होते हैं, तो उन गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए भी ये बात बड़ी मुजर्रफ है। इसी तरह गुमशुदा चीज को पाने के लिए आयतुल्ला बेहजत ने भी एक चीज बताई कि वो चीज जो गुम हो गई हो या चोरी हो गई हो, खा वो इंसानी क्यों ना हो, यानी कोई उसको उठा के ले गया हो, तो उसे पाने के लिए उस वक्त तक ये जिक्र पड़े जब तक वो चीज मिल नहीं जाती। छोटा सा अस्बाह तो फी अमान अल्लाह अमसाई तो फी जवार अल्लाह, मैंने खुदा की पनाह में सुबह की और जवार इलाही में रात में दाखिल हुआ, यानी हर वक्त अल्लाह की पनाह में वो चीज रहेगी और उसको उस वक्त तक इस जिक्र को मुसलसल पढ़ते रहें जितना भी मुमकिन हो पढ़ना, जब तक कि वो चीज या वो शख्स मिल नहीं जाता। बल्कि किताब गौहर हकीमाना जो मेहदी आसिमी की लिखी हुई है उसमें ये बात आई कि एक शख्स को किसी से कोई काम था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ होगा, उसने अपने घर में बैठकर कसरत से मस्कूरा जिक्र को पढ़ा, ये अस्बाहतुफी जवारिल्लाह, उसके नतीजे में वो शख्स खुद ही चलकर उसके पास आ गया जिसका कोई इम्कान ही नहीं था। यानी जाहिर है इन चीजों की सपोर्ट में बहुत सारी हिकायात भी हैं, और मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई चीज रिपोर्ट नहीं होती, किसी जगह पब्लिश नहीं होती, तो लेकिन बाहर जो दीगर ममालिक वाले जैसे ईरान इराक वगैरह के अंदर ये चीजें खुद वो लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, किताबों के अंदर आती हैं, इससे लोगों का एतकाद वगैरह भी उससे बढ़ता है, लोगों के अपने तजर्बात इसके अंदर शामिल होते हैं। तो बहरहाल ये दो एक चीजें इसके अंदर मैंने जिक्र कर दी, क्योंकि सूरह निसा गुमशुदा चीजों को या गुमशुदा इंसान को पढ़ने के हवाले से भी बड़ी मुजर्रब है, तो दो एक आमाल और भी इस सिलसिले में जिक्र कर दिए गए। अच्छा, शोहर और बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, बातें आगे इतनी बढ़ जाती हैं कि बाज़ों का तलाक तक की नौबत आ जाती है, तो खवास आयातुल कुरान जो किताब है जिसमें बहुत सारे आयात कुरानी के हवाले से अमलियात बताए गए हैं, आकाए बाकर नजफी की जो किताब है उसमें एक रिवायत है जो कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो ये है कि अगर कोई शख्स ईमान और नियत खालिस के साथ, यानी कोई और इसकी वजह ना हो, ईमान के साथ और नियत खालिस के साथ शौहर और बीवी में मुवाफ़िकत की नियत से बावजू होकर इसे पढ़े, यानी उनके दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, बावजू होकर उसे पढ़े, तो इंशाल्लाह उसको मकसूद हासिल होगा और शौहर और बीवी एक दूसरे पर मेहरबान हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के खाताएं दरगुजर करेंगे, एक दूसरे को रिगार्ड करने लगेंगे, इज्जत से पेश आने लगेंगे, दोबारा उनमें सुलह हो जाएगी। अच्छा, ये शौहर और बीवी भी इस अमल को कर सकते हैं, यानी ईमान और नियत खालिस के साथ इस सूरे को बावजू होकर पढ़ें, शौहर और बीवी भी कर सकते हैं, और मसलन शौहर और बीवी बात समझने को तैयार नहीं है तो लेकिन जो और उनके खैर ख्वाह हैं वो चाहते हैं कि इनके दरमियान जो सुलह हो जाए, तो वो भी उन लोगों की तरफ से इस सूरे को पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा इस लिहाज से अहम है सूरह निसा। इसी तरह से जादू के तोड़ के लिए भी जो किताब खवास आयत कुरान करीम जो अभी जिसका मैंने हवाला दिया बागर नजफी की, उसमें भी यह बात आई है कि ईमान और नियत खालिस के साथ बावजू होकर अगर कोई शख्स सूरह निसा की आयत नंबर 100 पढ़े, 100 बावजू होकर, और बल्कि नहीं पढ़े भी और उसके साथ साथ इससे आयत नंबर 100 को लिखे, लिखने के बाद उसको पानी से धोए और निहार मुंह यानी बगैर कुछ खाए पिए सुबह के वक्त 7 दिन तक उसका पानी पिए, तो उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। आकिब बाकर नजफी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये यानी बड़ा मुजरब अमल है जादू के तोड़ के हवाले से, तोड़ के हवाले से भी है, और अगर कोई शख्स चाहे कि मुझ पर किसी का कोई जादू असर ना करे। अच्छा, अलबत्ता ये दिमाग में जरूर है कि हर चीज भी जादू नहीं है, जो मैंने इससे पहले कहा था, मसलन इंसान खुद से बहुत सारे काम कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है घर के अंदर, उसका अपना अखलाक सही नहीं है, और जो है वो बाहर एक को दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है कि फलाने ने जादू तो नहीं कर दिया, खुद अपने आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से मुसीबतों में गिरफ्तार हो रहा है, और शक दूसरे किसी के ऊपर कर रहा है जो शैतान ही उसके दिल में डालता है, तो शायद 0.1-2% 3% जगहों के ऊपर इस तरह से जादू वगैरह लोग आमतौर पर जादू के लिए कोशिशें भी करते हैं, तो वैसे सब क्योंकि आमिल भी सारे जादूगर भी हैं, सब जाली ज्यादातर, तो वो जादू वादू भी कुछ होता नहीं है, चाहे उसके लिए अटैम्प्ट ही क्यों ना कर रहे हैं, और बाकी जो चीजें नामसाइद और इस लिहाज से हो रही होती हैं, जो किसी को पसंद नहीं आ रही होती हैं, वो किसी जादू वगैरह का शख्साना नहीं होती, बल्कि अपने ही अमाल की कुछ मुसीबतें होती हैं। लेकिन बहरहाल चलें कि जो बहुत कम भी अगर परसेंटेज सही, अगर कोई शख्स जादू कर रहा है या जादू हो चुका है उसके तोड़ के लिए, तो उसमें भी सूरह निसा को इस अंदाज से ईमान और एतिकाद खालिस नीयत के साथ बावजू होकर सूरह निसा की आयत नंबर 100 को लिखे और वक्त सुबह बिल्कुल निहार मुंह 7 दिन तक उसका पानी पिए। तो इसके अंदर ऐसी खसूसियत है कि उस पर न सिर्फ ये कि कोई जादू असर नहीं करेगा, बल्कि किसी पर जादू की कोई अटेम्प्ट हुई हो तो वो उसके तोड़ के लिए भी ये अमल काफी मुजर्रब है जादू के हवाले से। अच्छा, इसी तरह से दुश्मन पर गलबा हासिल करने के लिए, अच्छा अब यहाँ फिर वही बार बार चीज कहनी पड़ती है, इसमें मोमिनीन एक दूसरे पर इस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल ना करें, यानी वही कि एक दूसरे को दुश्मन समझा हुआ है और दुश्मन जहां पे लफ्ज आ रहा है दुश्मन, तो वहां बस अपने करीब तरीन अफराद के ऊपर भी वो दुश्मनों वाले जो है अमल किए जा रहे हैं। अगर जो जहर कुरानी आयात है इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो उस लिहाज से नहीं होगा, लेकिन आपकी नीयत खालिस नहीं रहेगी, आपने अपने जो मोमिन है और विलायत अमीरुल मोमिन का कलमा पढ़ने वाला है, खुदा और रसूल के ऊपर ईमान रखता है और सब चीजों के ऊपर, और कुछ आपस की चीजें ऐसी हो रही है उसको अपने दुश्मन समझ लिया अपना, तो ये इतनी अच्छा एक फिक्र नहीं है। इसमें इंसान को अपने आप को हर शख्स को अपना दुश्मन इस अंदाज से समझ ले। बहरहाल खवासी आयत कुरान करीम जो है उसमें भी ये आई है दुश्मन पर गलबा हासिल करने के लिए, कि अगर इसकी जो आयात है सूरह निसा की आयत नंबर 174 और 175, क्योंकि 176 पे तो ये सूरह वैसे खत्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल आखिरी में जो आयात है, तो उसमें आयत नंबर 174 और 175 अगर कोई शख्स इन आयात को खालिस नियत से लिखे और इतवार के दिन रोजा भी रखे, इतवार के दिन रोजा रखे और इतवार ही के दिन इन आयात को खालिस नियत से लिखे, तो दुश्मन के तमाम दावे उसके ऊपर जो है वो बातिल हो जाएंगे और उसको अपने दुश्मन पर गलबा नसीब हो जाएगा। ये एक अमल उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है सूरह निसा के हवाले से, लेकिन इसकी पूरा सूरह निसा नहीं लिखना है, एक आयत नंबर 174 और 175 लिखनी, और इतवार के रोज हो ये काम और इतवार को रोजा भी रखा जाए। किसी के अगर किसी पर वाजिब कजा रोजे हैं तो अपने कजा रोजे रखे, कजा रोजे नहीं है तो कोई भी मुस्तहब रोजा की नियत की कोई मखसूस दिन हो तो उस दिन नियत कर ले। तफाक अगर ऐसा हो गया कि इतवार ही के रोज जो है वो कोई ऐसी तारीख आ जाए, और नहीं भी है तो साल के जिस दिन जिन दिनों में रोजा रखना हराम होता है वो दिन अगर निकाल दिए जाए तो रोजाना ही रोजा रखना मुस्तहब है, और कुछ खास दिनों में ताकीद ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहरहाल इतवार के रोज कजा हो तो कजा की नियत से, वरना कोई भी मुस्तहब नियत से रोजा रखे और उसके बाद आयत नंबर 174 और 175 पढ़े। तो इस दो आयात की तिलावत से जो कि हालत रोजा में वो लिखेगा इंशाल्लाह उसको अपने दुश्मन पर कामयाबी नसीब होगी, और दुश्मन ने जो भी दावा उसके ऊपर बातिल दावा किया होगा तो वो सब दावे बातिल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, वो अलबत्ता अपने रिश्तेदारों के लिए भी हो सकती है, यानी मकसद मेरे कहने का ये कि बहुत से रिश्तेदार जो बदगोई कर रहे होते हैं, बदजबानी कर रहे होते हैं, अपनी चर्ब जबानी से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, लोगों को आपके खिलाफ कर रहे होते हैं, तो इसके मुताबिक भी उलमा ने ये बात लिखी है कि अगर सूरह निसा की आयत नंबर 148 को खालिस नियत के साथ किसी ऐसे शख्स पर पढ़े जो अपनी चर्ब जबानी से आपको परेशान कर रहा हो, यानी जिसकी जुबान से आप परेशान हो, वो बहुत बदगो हो, आपके मुताबिक बहुत इस किस्म की बातें लोगों के अंदर कर रहा हो या कर रही हो, आपको परेशान कर रही हो, लोगों को आपके खिलाफ कर रही हो, और किसी ऐसी जगह अगर मसलन आपको बुलाया जाए कि जहां पर वो अपनी कुव्वत गोयाई से वो शख्स जो है वो जो बदगो है वो आपको कमजोर कर रहा हो या आपको कसूरवार साबित कर रहा हो, उस वक्त अगर वहां जाकर कि जहां पे समझे इस लिहाज से कहीं जिरगा लगा हुआ है, कहीं भी ये बातचीत हो रही है जहां वो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा कोई बातें कर रहा है, वहां जाकर अगर सूरह निसा की आयत नंबर 148 को पढ़ दिया जाए, तो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यानी उसकी बदगोई से हिफाजत हो जाएगी, यानी उसकी बदजुबानी से बचने के लिए आयत नंबर 148 को उस जगह के ऊपर पढ़ दिया जाए कि जहां पर वो शख्स अपनी जुबान से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये उस लिहाज से सूरह निसा की आयत आपने देखा कि अमूमी जिंदगी में भी कितनी इनसे हिफाजत होती है और कितने फवायद इनके अमूमी जिंदगी में भी हासिल होते हैं। इसी तरह से जालिमों से बचने के लिए, जालिम का खौफ दूर करने के लिए भी आयत 148 है, यानी ये जो भी बदगोयों से हिफाजत के लिए थी वही जालिमों से बचने के लिए भी। इसको ये मुतालिक भी है कि अगर ईमान और खालिस नीयत के साथ लिख कर अपने पास रखे, अभी तक तो ये था कि उस जगह जाकर पढ़ दे, लेकिन अगर इसको लिख कर अपने पास रखे और जिस जालिम के पास भी जाना हो बावजू होकर चला जाए, यानी आयत नंबर 148 को लिख कर अपने पास रखे और बावजू होकर जिस भी जालिम या जिससे आपको खौफ महसूस हो रहा है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसके पास आप चले जाएं और वहां जाकर भी आयत नंबर 148 पढ़ दें। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा आवाज में उसको पढ़ा जाए, जेरे लब भी उसको पढ़ा जा सकता है, तो उस जालिम से भी अमान मिल जाएगी और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी जालिम से बचने के लिए। अच्छा, अब अगर इसके पैगामात भी अगर आप देखें तो वाकईतन सूरह निसा के पहली आयत में दो मरतबा तकवे की वसीयत आई। ये आप जाकर जब इसके सूरह निसा को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि 176 आयात हैं, सब पे हम रुक रुक कर अगर गुफ्तगू करेंगे और सारी आयात भी दिखाते हुए जाएं तो बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी गुफ्तगू। तो आप खुद देखेंगे इस कदर अहमियत है तकवे की कि परवरदिगार आलम ने एक ही आयत में दो मरतबा तकवे की वसीयत कर रहा, अल्लाह से डरने की वसीयत कर रहा। तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को गुनाहों से हत्ता उल इम्कान बचाने की कोशिश करे। इस पे हमारे इस मौजू पर कई दरूस भी हो चुके हैं, उलमा से भी सब लोग सुनते रहते हैं और कुरान और अहदीस तो तकवे की वसीयतों से भरा पड़ा। फिर इसमें आगे चलकर खिलकत इंसान के मुतालिक भी गुफ्तगु हुई और वो आयात जो इसके अंदर हैं उसके जिमन में ही ये उलमा जैसे कि आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई वगैरह, उस लिहाज से कि हजरत आदम की नस्ल कैसे चली, आगे कैसे बढ़ी, क्या मसलन भाई बहनों की आपस में शादियां हुई थी तो क्या कोई वहाँ हूर वगैरह वहां से आई थी, और इस तरह की जो बहस होती है जिस पर अभी हमारा फिलहाल जाने का इरादा नहीं है, किसी भी और जमीन में जब ये वाला मसला अलग से कभी डिस्कस करेंगे कि इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़ी तो वहां पर उन दलाइल को भी नकल किया जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई ने इसके अंदर जो जोड़े नफ्से वाहिदा से जो हमने इंसान को पैदा किया है उस जमीन में अपने दलाइल नकल किए। तो बहरहाल अगर कोई शख्स इस मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहे तो तफासिर वगैरह का मुतालिया करे। खिलकत इंसानी के मुतालिक गुफ्तगू, रिश्तेदारों से मुतालिक बड़ी गुफ्तगू हुई है, वो भी इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। यतीमों के बारे में बड़ी ताकीदी गुफ्तगू हुई, माशरे के अंदर देखिए यतीम मौजूद हैं, यतीमों के हकूक हैं, खास तौर पर यतीम उनके जो मीरास वगैरह की तकसीम है इसके अंदर आमतौर पर खुदा नखास्ता माशरे के अंदर इस तरह के अफराद ना हो जो उनके मीरास को गसब करके बैठ जाएं या उसके निगरान वगैरह बन जाएं और उस तक बाज़ोकात लोग अपने नाम करवा लेते हैं, यतीम महरूम हो जाता है। तो यतीमों के बारे में बहुत ज्यादा ताकीद इसी सूरह निसा में आई। इसी तरह से मर्दों को चार निकाह की इजाजत, मुसना व सुलासा व रुबा जो कुरान की इस सिलसिले में आयात हैं सूरह निसा में, उसकी इजाजतों का मसला आया है, उसकी इजाजत का वो भी इसके अंदर ये इसी सूरह निसा की मशहूर आयात में से। औरतों के मेहर अदा करने की बड़ी ताकीद आई, औरतों का मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। आमतौर पर लोग ऐसी उसका शिकार हो जाते हैं, गफलत का शिकार हो जाते हैं या जोर जबरदस्ती वगैरह करके जो है उसको माफ करवा लेते हैं। बहरहाल ये उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। अगर कोई बखैर खूबी खुद ही जो है वो माफ कर दे तो एक अलग बात है कि औरतों का उनका मेहर अदा करो, फिर अगर वो खुशी खुशी तुम्हें देना चाहे तो ठीक है, फिर शौक से तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खुशी खुशी होना चाहिए। आमतौर पर यह होता है कि बस बेचारी वो सब्र करके बैठ जाती है, तो इसको खुशी खुशी नहीं कहा जाएगा। तो औरतों को मेहर अदा करने की उस लिहाज से बड़ी ताकीद आई। देखिए कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं और उसके खिलाफ ही यानी कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं और उसके जो जो चीज लिखी हुई है और जो अहकाम बयान हो रहे हैं उसके बरखिलाफ अमल कर रहे हैं, तो उसकी तो रिवायतों मिलता है ना गोया उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, यानी उसके मुताबिक अमल करना जरूरी है। तो जब कभी आप आयात सूरह निसा की तिलावत करें तो देखें भी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, और अपनी जहां कोई गलती है उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। इसी तरह से मसलन मीरास के बहुत ज्यादा अहकाम सूरह निसा के अंदर बयान हुए, और मीरास के अंदर वाकईतन जितनी गलतियां माशरे के अंदर मीरास के सिलसिले में शायद ही किसी मसले के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर के मीरास में लोगों की सही तकसीम नहीं होती है, सही तौर पर मीरास मिलती नहीं है लोगों को, कुछ महरूम रह जाते हैं, खासतौर पर वो अफराद को जो अपनी दूसरी शादियां की हुई होती हैं, छुपाई भी होती हैं और औलादें भी हुई भी होती हैं, तो वो उन तक मरने के बाद उनकी जो दीगर जो औलादें होती हैं जो लोगों के सामने नहीं है उन तक उनका हक नहीं पहुंचता है। तो बहरहाल बहुत सारी मीरास के सिलसिले में ऐसी गड़बड़ हैं, या मसलन खवातीन के सिलसिले में औरतों को आमतौर पर मीरास में हक नहीं दिया जाता, या उनको उस लिहाज से जैसे बाप का इंतकाल हो गया बेटियां रुख्सत होकर चली गई तो बाप की जो जायदाद है मसलन वो उस लिहाज से उनके जो हकीकी वरसा हैं उसमें तकसीम होनी चाहिए। तो बहुत से माशरे के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां मीरास के सिलसिले में देखी जाती, वो इसी सूरह निसा के अंदर आई। खासतौर पर लड़कियों के हक मीरास का तो अलग से भी बयान आया कि युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हिदायत करता है, वसीयत करता है, और फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों का इतना हिस्सा ये इसी आयत के अंदर आयत नंबर 11 में बयान हुआ है। तो इसकी बहुत ज्यादा ताकीद है कि इंसान यानी मीरास के मसाइल को समझे और उसके मुताबिक जो है वो उसकी तकसीम हो। और फिर आयात के अंदर ये बात भी आई है कि जो इन हदूद से तजावुज करेगा वो हमेशा दर्दनाक अजाब के साथ जहन्नुम में रहेगा, यानी जो भी चीजें ये सब बयान हुई हैं अल्लाह की कायम करदा हदूद बयान हुई हैं उसके अगर कोई बरखिलाफ जाएगा तो दर्दनाक अजाब के साथ जहन्नुम में रहेगा। तो कुरान की ये आयात है ये सूरह निसा के अंदर। अच्छा, फिर तौबा की कबूलियत की आयात भी हैं इसमें। मरने से पहले पहले अगर कोई शख्स मसलन तौबा कर रहा है तो उसमें ये बात कही गई है कि तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले बुराइयां करते हैं, जब मौत सामने आती है तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, यानी फरिश्ते अजल को देखे जाने से पहले पहले इंसान अपनी सही तौर पर वो तौबा कर ले, ये ना हो कि जब बिल्कुल ही मौत सामने आ गई, कुछ ऐसे बड़े मर्ज मौत में बिल्कुल गिरफ्तार हो गए, चले वहां तक भी बात चल जाती है कि इंसान उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन फरिश्ते अजल को देखने के बाद फिर कोई तौबा नहीं। ये फिरौन वाली तौबा जो है वो परवरदिगार आलम कबूल नहीं करता है कि जब मौत बिल्कुल सामने आ गई उस वक्त तौबा कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम आयत है आयत नंबर 118 कि वलैसतु तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूनस सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़ारा अहद, यानी मौत को जब सामने आ गई उसके बाद फिर कोई तौबा तुम्हारी कबूल नहीं होगी। तो अभी जब तक जिंदा हैं मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, इससे पहले पहले सच्ची तौर पर तौबा हो जानी चाहिए, वरना फिर इसके बाद हो सकता है किसी को एकदम से सडन डेथ भी आजकल हो जाती हैं, को उसको इतना वक्त भी नहीं मिलता है कि तौबा के लिए, तो हर वक्त तौबा के लिए माइल रहना चाहिए और कसरत के साथ रोजाना ही तौबा करनी चाहिए। महरम रिश्तों का बहुत बयान इस सूरे के अंदर जिक्र हुआ है और सब रिश्ते जो है बाकायदा गिनवाए गए, ताकि इसमें यह भी है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमारे यहाँ कि जनाब ये तो खुपाई हैं, ये तो खालूई तो हैं, ये तो अपने, तो ये सब चीजें ये सब नामहरम रिश्ते हैं, इनके सामने पर्दा भी करना पड़ेगा, बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इस तरह के जो कजिन्स वगैरह से पर्दा है, आमतौर पर सोचते हैं ये तो अपने घर के ही सारे अफराद हैं, हर वक्त तमाम तकरीबात में लोग मिलते हैं, तो वहां पर इन रिश्तों के अंदर हिजाब वगैरह का ख्याल नहीं किया जाता है। तो महरम रिश्तों का बयान अलग से अल्लाह ने जो है वो किया है कि सिर्फ महरम ही है, इसके अलावा जितने होंगे वो सारे नामहरम, तो उनमें तमाम उन एहतियातों को बरकरार लाना चाहिए कि जो कि इन नामहरम रिश्तों के सिलसिले में हिजाब वगैरह का अलखसूस बयान है। उसमें आयत मुता जो बहुत मशहूर आयत है आयत नंबर 24 वो सूरह निसा की है, फमस्तमतअतुम बिही मिन्हुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, तो आयत मुता वो इसी के अंदर है, क्योंकि ये माशरे के अंदर ये चीज जब दलाइल के तौर पर पेश की जाती है तो आपके दिमाग में रहे कि आयत नंबर 24 है। अच्छा, एक दूसरे का हक मारने की बड़ी मजम्मत आई है सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 29 में, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से ना खाया करो। तो लोग एक दूसरे को कर्जा लेकर वापस नहीं करते हैं, कोई और माल ले लिया अमानतन, कोई चीज उनके पास आ गई वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इसमें बहुत सख्त इसकी मजम्मत आई है कि आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से इंसान ना खाए और मुतवज्जे रहे और आगाहे पगाहे चंद चंद महीनों के बाद अपने देखना चाहिए किसी कोई चीज आपके पास आ तो नहीं गई, अगर आ गई है तो उस तक वापस लौट आए। लोग आमतौर पर कर्जे ले लेके और उसके बाद टालते रहते हैं और वो भी बेचारा या तो शर्मा हुजूरी में, दूसरा जो है वो खामोश रहता है या वो मायूस हो जाता है। तो बहरहाल एक दूसरे का माल इस तरह से खाने की सी सूरह निसा की आयत नंबर 29 में शदीद मजम्मत आई। अच्छा, इसी सूरह में आयत नंबर 31 में कबीरा गुनाहों से बचने का इनाम बयान हुआ है, इन तजतनिबू कबायरा मा तनहौना अन्हु नुकफ्फिरन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लोगे जिनसे तुमको रोका गया है, तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाहों की यानी छोटे गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे और तुम्हें नुदखिलकुम मुदखलन करीमा और तुम्हें बाइज्जत मंजिल तक पहुंचा देंगे। यानी इंसान अगर कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा ले तो परवरदिगार आलम सगीरा गुनाहों से उसकी पर्दापोशी करेगा, उसको उनको माफ कर देगा। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी बहस है, हमारी जो गुनाहने कबीरा के मौजू पर भी गुफ्तगू हो चुकी है और यहाँ पर अलग से मदरसे मौलाना आमिर यासूबी साहब कबला, उन्होंने भी फहरिस्त गुनाहने कबीरा जो है पेश की थी कि तकरीबन 100 के करीब ऐसे हैं कि जो कि गुनाहने कबीरा शुमार होते हैं, उसमें से भी 82 जो हैं वो तो यकीनी कबीरा हैं, 18 के मुतालिक उलामा में बहस है कि इन्हें कबीरा माने या सगीरा माने, और कुछ कबीरा कहते हैं कुछ सगीरा कहते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि गुनाह सगीरा भी हो और उसकी तकरार बार बार की जाए तो वो भी कबीरा बन जाता है। तो बहरहाल अगर इंसान वो उसके पास एक लिस्ट हो, देख ले कि इनमें से कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, उनसे अपने आपको अगर बचा ले इन 100 गुनाहों से, जिसकी एक बाकायदा एक लिस्ट है जो मुज्तहिदीन की जो किताबें होती हैं मुफस्सिल मिनाजुस सालेहीन या इमाम खुमैनी की तहरीरुल वसीला वगैरह है, उनमें भी एक लिस्ट बयान हुई है। उनमें निस्बतन जरा लिस्ट कम है, लेकिन जो और उलामा की भी तमाम चीजें जमा कर ली है तो बहरहाल 100 से ऊपर ही लिस्ट नहीं जाएगी। तो अगर कोई शख्स कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा ले तो सगीरा गुनाहों से को परवरदिगार आलम माफ कर देगा। अलबत्ता सगीरा और कबीरा के अंदर भी एक बहस आती है, बहुत से उलामा तो ये भी कहते हैं कि हर गुनाही पर जो परवरदिगार की जिसमें नाफरमानी हो कबीरा ही, यानी ये तो नहीं होगा ना कि भाई कोई कहे कि जनाब जो शहीद दस्त गैफ शिराजी कहते थे कि कबीरा और सगीरा की बहस में कि क्या कोई शख्स ही कहेगा कि भाई ठीक है बड़े गुनाह बड़े सांपों और अजदहों से तो मैं अपने आप को नहीं डसवा रहा हूँ, लेकिन छोटे सांपों छोटे साइज के सांपों से अपने आप को कटवा लेता हूँ। नहीं, हर छोटा भी हो है तो सांप ही ना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो छोटा गुनाह भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, उससे भी अपने आप को बचाना जरूरी है। लेकिन परवरदिगार ने बहरहाल ये कहा है कि अगर कोई कबायर से अपने आप को बचाए तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें करामत वाली मंजिल तक पहुंचा देंगे, यानी जन्नत में तुम्हारा दाखिला होगा। इसके बाद इसमें एक बड़ी मारकतुल आरा आयत है, आयत नंबर 34, मर्द औरतों के हाकिमों निगरान है, अर रिजाल कव्वामून अला निसाए बिमा फज़लल्लाह, यानी और मर्द औरतों पर हाकिम है। अब इसमें एक बड़ी बहस आती है, खास तौर पर उन बहसों जिसमें हमारे एक अलग से एक या दो नशिस्तें पूरी होंगी कि वो रिवायात कि जिनमें औरतों को नाकिसुल अक्ल करार दिया गया है, जिनमें औरतों को की मजम्मत आई है, उनकी अकल के एतबार से आई है, उनके बाज आमाल के एतबार से आई है, तो उसका हकीकी और सही मफहूम क्या है। आमतौर पर मर्द हजरात घरों में अपनी बीवियों को चिढ़ाने वगैरह के लिए उन अहदीस को भी पेश करते हैं, उनका सही पहले तो उनको बहस होगी कि वह उनका बैकग्राउंड क्या है उन अहदीस का, किस जमीन में वो अहदीस आई हैं, फिर उनका इतलाक इन तमाम औरतों के ऊपर है या नहीं, एक खास मौका है उसका। उसी के अंदर ये वाली चीज भी आती है, वो कहते हैं कि हम औरतों के ऊपर हाकिम, बस हमने जो कह दिया ऑर्डर कर दिया बस ये चीज़, तो ये इन मानों के अंदर नहीं है, बल्कि एक इंतजामी लिहाज से एक चीज आई है, तो इसकी अपने मुकाम पर एक तफसील है, लेकिन ये बड़ी मशहूर आयत है इस लिहाज से, अर्रजालु कवामून अला निसा, तो अपने मुकाम पर इंशाल्लाह इसकी भी तफसील आएगी। बुखल की बड़ी शदीद मजम्मत आई है आयत नंबर 37 में, कि जो खुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। खास तौर पर देखिए, बखील जो है ये आमतौर पर हम सोचते हैं कि शायद ये आमतौर पर मसलन कोई आपकी दावत नहीं कर रहा है तो आप कहें बड़ा कंजूस है, तो किसी को अपने घर ही नहीं बुलाता है, यानी उन मानों में ये चीज इतनी नहीं है, बल्कि असलन बखील वो है जो कि अपने वाजिबात अदा नहीं करते, उसकी भी एक अलग तफसील है, और उन ये दीगर मानों में भी आ सकते हैं कि जो कि माशरे के अंदर देख रहे हैं कि लोग कितने गरीब हैं, कितने ज्यादा परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, ये पैसों पर पैसे जमा कर रहा है और ये मसलन उन गरीबों तक उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहा है। खासतौर पर देखिए कोविड वगैरह का दौर है, इसके अंदर खुद भी आप अपने दाएं बाएं अतराफ में कि बहुत से जो वो अफराद के जो कि जरा सफेद पोश हैं और वैसे मांगते नहीं फिरते हैं, उनके लिए खासतौर पर आपको देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर तो कोई माली बोझ नहीं आ गया है, कि उसको किसी भी तौर पर हर शख्स सोच रहा है कि भाई जब इन पे आया है तो मुझ पे ना आ जाए, तो हर आदमी अपने सेविंग को जमा करके बैठा हुआ है, लेकिन बहरहाल बहुत से मोमिनीन हैं जो कि माशाल्लाह इस सिलसिले में मुतवज्जे हैं और माशरे में इमदाद भी करते नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल जहाँ बुखल का लेकिन ज्यादा इतलाक उस वक्त होता है कि जब इंसान अपने वाजिबात अदा ना करे, खुम्स वाजिब होता है लापरवाह है खुम्स को अदा करने से, दीगर माली वाजिबात हैं वो अदा नहीं कर रहा है, हज पे नहीं जा रहा है, और अब तो कोविड के बाद से जमा सुनने में आएगा हज मजीद महंगा हो जाएगा, अब वो शख्स कहेगा नहीं वाजिब तो ठीक है, अभी पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो मैं अब हज को और मौखर करता चला जाए पैसे बचाने के चक्कर में। तो बहरहाल ये बुखल की मजम्मत आई है इसमें। अच्छा, रियाकारी में माल को खर्च करने की मजम्मत आयत नंबर 38 में आई, जो लोग भी अपने अम्वाल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और आखरत पर ईमान नहीं रखते, यानी जो दिखाने के लिए भी खर्च कर रहे हैं बस, यानी इसको यही समझा गया कि जैसे वो अल्लाह और आखरत पर ईमान नहीं रखते, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिसका शैतान साथी हो जाए वो बदतरीन साथी, यानी जो रियाकारी वगैरह अमाल के अंदर है। अब हम तो देखिए दूसरों के ऊपर रियाकारी का हुक्म नहीं लगा सकते, यानी अच्छा ये रियाकार नहीं, ये तमाम आयात या रिवायात जो जितनी भी आई है, इंसान अपने ऊपर इसको इतलाक करके देखे कि तुम तो नहीं ऐसा कर रहे हो, ये नहीं कि दूसरे लोगों के ऊपर, जैसे हमने हमारी इस मौजूद मदरसे के सिलसिले में एक किताब भी है तकब्बुर के सिलसिले, तो तकब्बुर की अलामतें बयान हुई तो उसमें भी ये चीज आई है, ये किताब आईना है, उसमें अपनी अखलाकी बुराइयों कैसे जांचे, तो इसके उसमें भी ये बात लिखी हुई है, यानी कि इंसान इन अलामतों को देखकर दूसरों पर हुक्म नहीं लगाए, अच्छा ये देखिए तो मुतकब्बिर लग रहा है, अच्छा ये तो देखें रियाकार लग रहा है, क्योंकि आपको दिल की छुपे हुआ हाल नहीं पता होता, बहुत से लोग जरा बहुत से बड़ा बंठन के रहते हैं, बड़ा कलफ लगे कपड़े पहने हैं, अपने का ये तो बड़ा मुतकब्बिर है, नहीं इस चीजों से तकब्बुर नहीं होता, ये दिल की कैफियत है, हर शख्स अपने अंदर अपने लिए खुद महसूस करे कि अलामत मुझ पर पाई जाती है, यानी दूसरों पर इसका हुक्म ना लगाए, तो देखिए कि मसलन मजलिस अज़ा का तबर्रुक है या और पैसे खर्च करने के जो मुकामात हैं, वहां गैरुल्लाह की कोई नीयत नहीं आनी चाहिए, अल्लाह के लिहाज से एक नीयत रहे। आमाल में रियाकारी की पहचान के तरीके क्या हैं, क्या हैं, इस पर हमारे कई दुरुस मौजूद हैं मदरसे की तरफ से, तो उनको भी देखा जा सकता है कैसे हम पहचाने कि हम रियाकार तो नहीं, उसमें अलामतें बयान हुई। इसी तरीके से आयत नंबर 43 आयत तयम्मुम है, फलम तजिदु मान फतयम्ममु सुईदन तय्यबा, अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम करो, तो तयम्मुम की आयत इसके अंदर तयम्मुम का जिसमें हुक्म मौजूद है वो आयत नंबर 43 आई है, और अक्सर व बेशतर अफराद को देखा है कि जो दीनदार भी हैं लेकिन तयम्मुम के नाम से घबराते हैं और तयम्मुम का तरीका उन्हें सही नहीं आता, तो मदरसे ने इस पर कई कई वीडियोस भी डाली हैं इसके मसाइल की, और उसके ऊपर सर्च की जा सकती हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी कि शिया तरीके से तयम्मुम का तरीका क्या है, तो इसको जरूर सीखना चाहिए, अक्सर व बेशतर घरों के अंदर ये मसला हो जाता है कि पानी नहीं आ रहा है, ऐसे ऑकवर्ड टाइमिंग्स के अंदर वजू या गुसल का मसला पेश आ सकता है कि जब पानी मौजूद ना हो या पानी हो लेकिन शदीद ठंडा पानी है जिससे मुमकिन ही नहीं है मसलन वजू या गुसल करना, तो फिर तयम्मुम की भी एक नौबत आ सकती है। तो उसके लिए हमेशा घर में इसकी तैयारी भी रखनी चाहिए कि मिट्टी वगैरह, लोग कहते हैं मिट्टी कहाँ है, मिट्टी ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। और आमतौर पर तंगी है वक्त का जो तयम्मुम होता है कि मसलन नमाज कज़ा होने वाली है, उसमें तो इतनी देर तक तयम्मुम करके आएंगे तो उसमें तो पूरा वजू और ये गुस्ल भी हो जाता है, बाज़ औक़ात कहते हैं वैसे जगह ही नहीं मिल रही। तो आपको ये तमाम चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आयत तयम्मुम है तो उसका पैगाम ये है कि तयम्मुम का तरीका भी सीखिए और उसका इंतज़ाम घर में करके रखिए। आयत लान आयत 52 है, इसमें परवरदिगार आलम ने लानत की है। और लान के मुतालिक ना जाने कितनी कुरान के अंदर आयात आई। लान को आमतौर पर एक चीज समझ लिया गया, हमारे भी अफराद समझने लगे हैं, वो ये कि शायद ये गाली टाइप की कोई चीज है। नहीं, गाली नहीं, ये रहमत खुदा से दूरी की दुआ है। यानी लान के मायने है कि वो शख्स रहमत खुदा से दूर हो जाए, तो ये कोई गाली नहीं है। और पूरा कुरान तो आमतौर पर बहुत से दुश्मनान अहले बैत के सिलसिले में भी इफरात और तफरीत का लोग शिकार हो जाते हैं कि नहीं उन पर लान भी ना कीजिए। हाँ, लान उस लिहाज से तो जरूर है कि आम पब्लिक प्लेसेस के अंदर और इस तरह से ना की जाए कि मसलन जो जिसे फसाद वगैरह का अंदेशा हो, लेकिन बहरहाल ये कुरानी हुक्म है और मुस्तहबात के अंदर से भी करार दिए, इस पर मराजे के फतावे भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल कि इंसान ऐसा ना हो कि मुसलमानों में कोई तफरका या इस तरह की कोई चीज हो और फसाद होने लगे, वो एक हराम में बदल जाएगा। तो लेकिन ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये समझ लिया जाए कि हुक्म लान ही बिल्कुल खत्म हो गया है, ये भी ना हो, और ये भी ना हो कि कहेगा जब हुक्म आया तो हर जगह लान कहेंगे चाहे फसादी क्यों ना हो जाए। नहीं, ये इफरात और तफरीत का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आयत 52 लान से मुतल्लिक भी। हसद की बड़ी मजम्मत आई आयत नंबर 54 में, या वो उन लोगों से हसद करते हैं जिन्हें खुदा ने अपने फजल और करम से बहुत कुछ अता किया। तो हसद करना, अच्छा इसमें भी एक चीज है हसद और एक होती है रश्क। अच्छा, हसद के भी तीन अकसाम हैं, उनमें से दो अकसाम जायज हैं, सिर्फ एक किस्म हराम बनती है कि जब आजा और जवारे से इंसान किसी को कोई नेमत पहुंचने से रोके। मसलन किसी लड़की का बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ, आपने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि वो दूसरे मशकूक हो गए और रिश्ता खत्म हो गया। अब आप कहेंगे मैं हसद तो नहीं करती, मैंने सिर्फ एक इस तरह के कोई जुमला, चाहे वो मायने खेज जुमला ही क्यों ना हो, ये भी हसद के उसके अंदर आ जाएगा, ये हसद के हसद का गुनाह आपको मिलेगा। या मसलन किसी को कोई बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, आपने वो जॉब खत्म करा दी, किसी को कोई बेनिफिट मिलना है, वो आपने कुछ कह के यानी अपने जुबान, अपने हाथों, अपने पाँव को, अपने एफर्ट्स को या अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उस शख्स तक वो नेमत पहुंचने से रोक दी, इसी को हसद कहते हैं। तो ऐसे लोग अफराद की बहुत मजम्मत आई जब इंसान ये वाली आयात पढ़े कि जिन पर अल्लाह ने अपने फजल करम से कुछ अता कि इंसानों से उनसे हसद नहीं करे, अल्लाह ने मजम्मत की है इसके अंदर। बल्कि हाँ, ये कर सकते हैं गिप्ता, जिसे रश करना कहते हैं कि परवरदिगार तूने इसको दिया मुझे भी दे। लेकिन हसद में जवाल नेमत की तमन्ना की जाती है दूसरे शख्स की। कहा जाता है ना कि हासिद के लिए यही सजा कितनी काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है, उसको कोई और सजा नहीं भी मिले वो अपनी हसद की आग में खुद ही जलता रहता है। तो बहरहाल इसकी बड़ी मजम्मत आई है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हसद की जो तीसरी किस्म है, पहली दो किस्में जो है वो हराम की हद तक नहीं, मसलन किसी के लिए दिल में बुराई आ रही है आके निकल रही है, ये भी हसद नहीं, बुराई आ रही है और दिल में बैठती चली जा रही है, यहां तक भी हराम तक नहीं पहुंचा, अलबत्ता इखलाकी बुराई है, इसको आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। फिर वो इखलाकी बुराई इस कदर आगे बढ़ जाती है कि वो दूसरे के लिए नेमतों को पहुंचने से रोकने लगती है। महसूद जो होता है, हासिद जो हसद कर रहा होता है, महसूद जिससे हसद किया जा रहा होता है। तो हासिद जो है उस तक नेमतों को पहुंचने से अपने ताल्लुकात, अपने आज़ा जवारे को इस्तेमाल करता है। तो पहली दो अकसाम में हराम की हद तक नहीं है, लेकिन उससे भी बचना चाहिए। और जब ये तीसरी चीज में दाखिल हो जाए कि जब वो अपने आज़ा जवारे को इस्तेमाल करने लगे तो फिर हराम की हद तक पहुंचता। तो आयत नंबर 54 में ये बयान हुआ। इसके अलावा इसी के अंदर आयत 59 है जो आयत उलिल अमर कहलाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम। कितना आप मजालिस के अंदर इस आयत को सुनते हैं, तो इसमें तो इतनी ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, अक्सर लोग इसकी तफासीर से भी वाकिफ हैं। पैगंबर इस्लाम से तवस्सुल की आयत, आयत नंबर 64, और हमने किसी रसूल को भी नहीं भेजा है मगर इसलिए कि खुदा से उसकी हुक्म खुदा से उसकी इताअत की जाए। और काश जब इन लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म किया था, काश वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था ये अगर आपके पास आ जाते रसूल अल्लाह के पास और खुद भी अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फार करते और रसूल भी इनके हक में इस्तग़फार फरमाते तो ये खुदा को बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। ये आयत खास तौर पर मदीने में जब वो जाजे कराम जाते हैं तो उलमा वहां जाकर जरूर इस आयत की को अपना दरूस का उनवान बनाते हैं। अच्छा, ये आयत खास तौर पर वहाबी फिक्र अफराद से भी को भी बहुत ज्यादा पेश की जाती है क्योंकि इस आयत के अंदर इस यानी पैगंबर की अपनी जिंदगी में भी और पैगंबर के बाहर इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तवस्सुल का जो नजरिया है हमारा कि चाहे वो इस दुनिया के अंदर जिंदा मौजूद हो या दुनिया से पर्दा फरमा गए हो हर सूरत में उनसे तवस्सुल का हुक्म है। और आयत के अंदर कोई तख़सीस नहीं कह रहा कि ये रसूल जिस वक्त जिंदा हो उसी वक्त के लिए, जब भी कोई शख्स जिसने भी अपने नफ्स पर जुल्म किया है वो पैगंबर इस्लाम के कब्र के पास आए और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फार करे और रसूलुल्लाह भी उसके इस काबिल हो यानी कि वो रसूल भी उसके इस्तग़फार को कबूल करें तो खुदा को बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे। सतून अबू अबी लुबाबा जो वहाँ पर मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर है जब उनकी तफासिल बयान होती हैं उन सतूनों की, उसमें सतून तौबा और सतून अबी लुबाबा जो है उस पर उसके ज़िम्न में उसकी तारीख जब बयान होती है तो ये वाली आयत ज़रूर उसमें आती है। तो ये आयत 164 नंबर की थी। इसके अलावा आयत जो 65 है उसके अंदर भी ये आगे चल कर आया है कि अगर कोई खुदा और रसूल यानी कि आपके परवरदिगार की कसम हरगिज़ साहिब ईमान नहीं बन सकेंगे जब तक अपने इख्तलाफात में आपको हकम ना बना लें, फिर जब आप फैसला कर दें तो अपने दिल में किसी किस्म की तंगी का एहसास ना करें और आपके फैसले के सामने सरापा तस्लीम हो जाए। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى محمد। तो बहरहाल पैगंबर का हुक्म अब यहाँ पर यही होता है कि लोग एक एक ज़माना था यहाँ पर, अब पता नहीं कि अभी भी अदालतों में होता है या नहीं कि जब इस किस्म की चीज़ें बयान हो रही होती हैं मसलन फैसले हो रहे होते हैं मीरास वगैरह के, तो पहले पूछा जाता था आपको अंग्रेजी कानून के मुताबिक मीरास का फैसला चाहिए या शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, तो लोग बताते हैं कि उस वक्त अक्सरियत लोग कहते थे हमें क्योंकि उसमें ज़रा फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं हमें अंग्रेज़ी कानून के मुताबिक फ़ैसला चाहिए, यानी रसूलुल्लाह ने जो उनके लिए फैसला कर दिया अल्लाह ने जो फैसला कर दिया वो नहीं चाहिए। मैं खातून से वाकिफ हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा अपना हक़ मीरास जो है ज़ाहिर बीवी जो बेवा होती है औलाद है तो 8वां हिस्सा मिलता है औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा मिलता है, बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो शरीयत के मुताबिक अपना हिस्सा चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे साहिबान ईमान हैं। तो बहरहाल कोई भी चीज़ जो फ़िक़ही हुकुम अपने लिए पता चला कोई बाज़ात मुज्तहिद के पास भी जाते हैं अपने फैसले को करवाने के लिए तो जो फैसला वहाँ से हो जाए फिर उसको कबूल कर लेना चाहिए। जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम के मुतालिक ये वाली चीज़ आई है कि जब एक शरीयत ने एक फैसला दे दिया है तो उसके फैसले को कबूल करो। अच्छा, फिर अगली आयत है आयत 69, जन्नत में मोमिनीन के साथ रफाकत, उसकी एक शर्त बयान हुई, जो भी अल्लाह और रसूल उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ रहेगा जिन पर खुदा ने अपनी नेमतें नाजिल की, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन और यही बेहतरीन रफीक। यानी इसमें शर्त क्या है, यहाँ हर एक को हम हर फासिक व फाजिर और बदकार के लिए बहरहाल दुआ तो चले तो किसी हद तक कर सकते हैं लेकिन हर शख्स को के बस जवारे मासूमीन में इसको जगह मिले वो ठीक है, दुआ की हद तक बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और अपने से अच्छी दुआ करनी चाहिए किसी के अमल का पता नहीं, लेकिन असलन जो शर्त बयान हुई है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, जब इताअत करेगा तब इनके साथ रहेगा। हर यानी वही है कि बिल्कुल बरखिलाफ अमल कर रहा है उनकी सीरत के और कहेगा मैं फिर भी जवारे मासूम में उनके साथ रहूं, तो ये एक अजीब सी ख्वाहिश है, इस पर इंसान को गौर करना चाहिए। और फिर ये कि आयत नंबर 80 में सूरह निसा की, उसमें कि रसूल अल्लाह की इताअत ही अल्लाह की इताअत, जो रसूल की इताअत को मई होते रसूल फ़कत अता अल्लाह, उसने गोया अल्लाह ही की इताअत की। यहाँ पर आजकल तौहीद के ऐसे दावेदार भी आ गए हैं और कितने ही नए नए ऐसे फिरके हमें इस पे नजर आ रहे हैं कि जो कि हदीसों को मानते ही नहीं, बस कहते हैं हम तो कुरान कुरान, देखिए हम तो कुरान से सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ कुरान ही आयत पेश कीजिएगा, हदीस वदीस पेश नहीं कीजिएगा। तो भाई कुरान खुद कह रहा है कि रसूल अल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत, तो आप उनकी तालीमात से मुंह मोड़ कर किधर जा रहे हैं और डायरेक्ट हवालदार बनने के चक्कर में क्यों आए। तो बहरहाल रसूल अल्लाह की इताअत वही अल्लाह की इताअत है। कत्ल की मजम्मत पर भी आयात आई हैं 92 और 93 कि जो भी किसी मोमिन को कसदन कत्ल करेगा उसकी सजा जहन्नम। तो देखिए बहरहाल इसके अंदर वो चीज भी शामिल हो सकती है कि आमतौर पर जिसका लोग ख्याल नहीं करते हैं, और बहुत सारे हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि मसलन उन्होंने एहतियात नहीं की और हमल करार पा गया मसलन, और उसके बाद फिर उसको एक्सक्यूजेज उसके लिए ढूंढते फिरते हैं, बल्कि इकदाम कर चुके होते हैं उसको एबॉर्ट कराने का, और उसके बाद फिर मसला पूछने के लिए आते हैं। तो दियत वगैरह अलग वाजिब होती है, उसके मसाइल अपनी जगह पर हैं, और वो भी कत्ल के जुमरे के अंदर आ जाता। तो बहरहाल उनके तमाम अहकाम से भी इंसान को मुकम्मल खबर रहना चाहिए। तो कत्ल सिर्फ ये नहीं कि बस कोई छुरी चाकू या गन लेके किसी को मारे, ये भी कत्ल के अंदर आता है कि बच्चे में अगर रूह पड़ चुकी है, वैसे तो उससे पहले भी जो है उसको गिराना जायज नहीं, सिवाय के कुछ खास तिब्बी ऐसी सख्त तरीन वजूहातों की जिसमें इसकी इजाजत मिलती है। ये आमतौर पर नहीं कि बच्चे बहुत हो चुके हैं और अब जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद उनको गिराने की फिक्र हो जाए, ये उसमें चला जाएगा, बहुत ही बड़ा और खतरनाक गुनाह है। इसी तरह से आयत 101 में नमाज कसर का भी हुक्म है कि जब तुम जमीन में सफर करो तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि अपनी नमाजों को कसर करो। अब देखिए यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ लोग अफराद इस किस्म के भी हैं कि वो नए नए फिरके इस पे बन जाते हैं, कहते हैं नमाज कसर तो वाजिब नहीं। देखिए आयत का अंदाज यही कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि अपनी नमाज को कसर करो, इसका मतलब है कि वाजिब नहीं। तो फला जुनाह अलैकुम या फलाइसा अलैकुम जुनाह, ये जैसे कि हज के सिलसिले में भी सही के लिए भी आता है कि कोई हर्ज नहीं है कि तुम सही करो, तो इसका मतलब है सही करना भी वाजिब नहीं है, अपनी मर्जी है करें या ना करें, जबकि वो वाजिबात में से। तो कुरान फहमी इस तरह की नहीं, आजकल ये भी एक बड़ा फितना बन गया कि सिर्फ तर्जुमा कुरान पढ़ो और उससे खुद ही मसाइल अखस करने शुरू कर दी। तो बहरहाल नमाज कसर वाजिब नमाजों में से एक है कि जब शराइत पूरी हो जाए तो नमाज को कसर किया जाता है, लेकिन इस तरह के भी अफराद जो फकत कुरान के लफ्जी तर्जुमों को देख के खुद से मनमानी तावीलात करते हैं तो वो इसके भी इनकार करने लगे। नमाज खौफ का तरीका इसके अंदर बयान हुआ है आयत नंबर 102 में। वो एक खास तरीका है कि जो कि हमारे यहाँ मिलता है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जो नमाज पढ़ी थी वो कौन सी नमाज थी, तो उसमें भी ये है जो बाजमात पढ़ी थी तो उसमें भी नमाज खौफ का एक उलमा उसमें बताते हैं जिसका तरीका इसी आयत 102 के अंदर आया। जो भी हमारा मौजू नहीं है बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको तफसील के साथ। नमाज खौफ नेक अमाल पर जन्नत की तरगीब आई, वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाते सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा नहरो खालिदीना फीहा अबद। जो लोग ईमान लाए हैं नेक अमाल किए हैं हम अन करीब उन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें दाखिल होंगी जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो इंसान वाकईतन ये सिर्फ ये कितनी दफा इसको पढ़कर गुजर जाता है, लेकिन ईमान और अमल सौले दो मुस्तकिल शर्तें बयान की गई, ना तो फकत ईमान से काम चलेगा ना फकत अमल सौले से काम चलेगा, दोनों से दोनों को साथ मिलाकर चलना हो तब जन्नत में दाखिल होंगे, कि दोनों शर्तें साथ साथ हैं जिनमें से हम कोई ना कोई एक शर्त भुलाए बैठे। आपको सरपरस्त बनाने की बड़ी मजम्मत आई आयत नंबर 144 में कि खबरदार कुफार को अपना, ए ईमान वालों खबरदार मोमिनीन को छोड़कर कुफार को अपना वली और सरपरस्त ना बनाना। तो आजकल ये चीज बहुत ही नजर आ रही है, खासतौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, यानी मुसलमान ममालिक गोया बिल्कुल यहूद और नसारा के कदमों के अंदर बैठ क्या बल्कि लेटते चले जा रहे हैं, और जबकि कुरान ने कितना वाज़े तौर पर कहा है कि मोमिनीन को छोड़कर कुफार को अपना वली और सरपरस्त यानी कभी हरगिज ना बनाना खबरदार। तो सूरह निसा की कोई आयत आयत पढ़ता हुआ जाए तो उसको देखना चाहिए कौन ऐसे ममालिक हैं जो कुफार को अपना वली और सरपरस्त बना रहे। आयत नंबर 144 के अंदर आप देखिए। तो इस तरीके से अगर सूरह निसा का अगर आप पूरी तिलावत करते हुए जाएं और तर्जुमा पढ़ते हुए जाएंगे तो हम एक सरसरी सा एक एक डिस्कशन के तौर पर आयात को लेकर आया, उसकी ना तफसीर में गए, बस एक अमूमी तौर पर एक हुक्म बयान करके उसकी तरफ एक तवज्जो दिलाई कि परवरदिगार इन आयात में हमें क्या कहना चाह रहा। तो अब बाकी जो सूरह निसा पूरी 176 आयात, वैसे आप शुरू से तरतीब से पढ़ते हुए जाएं और उसका तर्जुमा पढ़ते हुए जाएं तो आप खुद अपने अंदर बड़ी नुमाया तब्दीली पाएंगे कि परवरदिगार आलम मुझसे ये तमाम चीजें इरशाद फरमा रहा है जिनसे मैं बिल्कुल ला इल्म हूं, या अगर इल्म भी है तो मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा हूं। जबकि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का इस वजह से हुक्म है कि अपने लिहाज से आप मुज्तहिद ना बने कि कोई चीज इनसे अपने फिक्री अहकाम अखस करने लगे अपनी मनमानी कोई तावीलात करके, लेकिन जितनी इस तरह के अहकाम और इखलाकी उमूर है इसमें तो परवरदिगार आलम की इन तमाम चीजों को पढ़कर उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। तो आपने इसके फजाइल भी देखे हमारी आमूमी जिंदगी में कितनी इसकी फजीलत और इसकी बहुत सी आयात और ये पूरा सूरह भी कितना ज्यादा काम आने वाला है, दुनियावी चीजों में भी, आखरत वाली चीजों के अंदर भी, कब्र के अंदर भी काम आएगा ये सूरह, फिशार कब्र से बचाएगा, आखरत में बचाएगा, तो और दुनिया की तमाम चीजों के लिए भी। तो इसके ऊपर लाजिम यह है कि इसकी तिलावत भी मुस्तकिल जारी रखिए और इसके पैगामात पर भी अमल पैरा रहे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।